हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इस चैप्टर को समझने के लिए पिछला चैप्टर जरूर पढ़ें। इसीलिए अक्रम अपना पूरा टाइम अपनी बीवी रिया को दे रहा था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर ने उसे पहले ही समझा दिया था कि अगले 6 महीने तक वो जोया के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा, और जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाएंगे वो खुद रिया को और अक्रम को ऐसी जगह शिफ्ट कर देगा जहां उनकी वाकई ज़रूरत होगी। वेल, राजवीर सिंघानिया अरमान ठाकुर के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि कितनी आसानी से अरमान ठाकुर मेहर और राजवीर का तलाक नहीं होने देगा। राजवीर ठाकुर ने भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं, इसीलिए उसने मेहर की कुछ फ़ोटोज़ अरमान ठाकुर को भिजवा दी थीं। अरमान ने जैसे ही मेहर की वो फ़ोटोज़ देखीं तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि उन फ़ोटोज़ में मेहर अलग अलग आदमियों के साथ बिस्तर में थे, वो भी बिना कपड़ों के। अरमान ठाकुर का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, और उसने अपने सामने रखी कांच के टेबल पर जोरदार घूंसा मारा था, जिससे उसके हाथों में भी खून निकल आया था। मेहर ने भी जैसे ही अपनी फ़ोटो देखी, उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। अरमान ठाकुर ने तो सोचा था इस तलाक के बदले वो राजवीर सिंघानिया को अपने कदमों में झुका लेगा और उसे उसकी आधी प्रॉपर्टी मेहर के नाम करा लेगा, और फिर राजवीर सिंघानिया, जो अरमान की कंपनी को टक्कर देने के चक्कर में था, वो अपने आप घुटनों के बल आ जाएगा। लेकिन राजवीर सिंघानिया ने वो फ़ोटोज़ भेजकर सारा पासा पलट दिया था, और फिर अपने एक आदमी के हाथों राजवीर सिंघानिया ने अरमान ठाकुर और मेहर ठाकुर के लिए एक पैगाम भिजवाया था कि वो उनसे मिलना चाहता है। पहले तो अरमान उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन फ़ोटोज़ को देखने के बाद अब राजवीर सिंघानिया से मिलना अरमान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अरमान को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था, अगर राजवीर ने वो सारी फ़ोटोज़ एक बार भी पब्लिक में वायरल कर दी तो अरमान की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जानी थी, क्योंकि अनुराधा मर्डर केस के बाद अरमान की काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो चुकी थी। तो अब अरमान किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और क्योंकि अगर मर की कंपनी नंबर 1 थी, अगर वो नंबर 1 कैसे बनी है ये बात सबके सामने आ जाती तो बहुत कुछ बर्बाद हो सकता था। तब राजवीर सिंघानिया ने अरमान ठाकुर और मेहर के साथ जल्दी ही एक तय की गई जगह पर मीटिंग फिक्स कर दी थी। राजवीर सिंघानिया ने अरमान और मेहर को एक होटल में बुलाया था। वो होटल किसी और का नहीं बल्कि राजा और चांदनी का था, जिसे अरहम ठाकुर, जब नेक दिल इंसान बन चुका था, उसने अपनी कुछ जायदाद का इन्वेस्ट करके खुलवाया था। और हम अरमान ठाकुर और राजवीर सिंघानिया को अंदाज़ा नहीं था वो जिस होटल में जा रहे हैं वो किसका होटल है। वेल, राजवीर ने वहाँ पर एक कमरा बुक किया हुआ था, और जल्दी ही वो वहाँ पहुँच चुका था और अरमान और मेहर के आने का इंतज़ार करने लगा था। जल्दी ही मेहर अरमान के साथ उसे होटल में पहुंच चुकी थी, जहां पर राजवीर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। राजवीर ने गर्म जोशी से अरमान के साथ हाथ मिलाया था, और अरमान से नज़र बचते ही मेहर की ओर एक आंख मार दी थी। मेहर ने नफ़रत से मुंह मोड़ लिया था। वेल, अरमान तो गुस्से से भरा हुआ बैठा था। उसने राजवीर को देखते ही उसका गिरेबान पकड़ लिया था और बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की ऐसी फ़ोटोज़ मुझे भेजना? क्या तुम जानते भी हो इसका क्या अंजाम हो सकता है? अरमान की बात सुनकर राजवीर मुस्कुराने लगा था और बोला था, क्या मैं नहीं जानता मेरी बीवी और मेरे साले साहब कितने ज़्यादा शातिर है? तुम लोगों को क्या लगा उसे डाइवोर्स के बदले तुम लोग मेरी आधी जायदाद ले लोगे, मुझे मेरे घुटनों के बाल बिठाओगे, तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? राजवीर के मुंह से ये सब बातें सुनकर अरमान हैरानी से मेहर की ओर देखने लगा था, क्योंकि ये बातें तो उसने अपने घर में कही थी, तो फिर राजवीर को कैसे पता चले? लेकिन अगले ही पल राजवीर ने उसे कहा, मैं तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ, मैं तुम लोगों के साथ इतने दिनों तक रहा हूँ तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम लोग कब क्या कर सकते हो या सोच सकते हो। अब मैं तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम लोग सीधे सीधे इन डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दो और मुझे अपनी बहन के नाम से आज़ाद कर दो, क्योंकि मैं इस घटिया औरत के साथ अपना नाम एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, राजवीर ने मेहर की ओर देखते हुए कहा था। राजवीर की बात सुनकर मेहर का पारा बहुत ही हाई हो गया था और गुस्से से उसने खड़े होकर राजवीर को एक चांटा मार दिया था। मेहर के हाथ उठाने पर राजवीर उसे कड़ी नज़रों से देखने लगा था। उसकी भी आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गई थीं और गुस्से से वो बाहर की ओर देखने लगा था और बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं अब आज़ाद हूँ। मैं तुम्हारी कैद में कोई कैदी नहीं हूँ जिसे तुम जब मर्जी हाथ उठा सकती हो। ऐसा कहकर राजवीर ने भी बदले में मेहर को एक चांटा मार दिया था। अरमान गुस्से से एकदम से खड़ा हो गया था और उसने अपनी गन निकालकर राजवीर की कनपट्टी पर लगा दी थी और बोला था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मेरे ही सामने हाथ उठाने की? अरमान का रिएक्शन देखकर राजवीर बिना डरे हंसने लगा था और बोला था, क्या हुआ मिस्टर अरमान ठाकुर, बुरा लग रहा है? मैंने तेरी बहन पर हाथ उठाया और तेरी बहन ने जो मुझे किडनैप करके मुझे टॉर्चर किया, मुझे परेशान किया और मेरे ही सामने गैर मर्दों के साथ रिश्ते बनाए, तो क्या वो सब ठीक था? अरमान ठाकुर, इस खिलौने को दिखाकर तुम मुझे डरा रहे हो। उसके साथ मैं बचपन से खेलते हुए आया हूँ। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ अकेले आया हूँ? इस पूरे होटल को मेरे आदमियों ने चारों ओर से घेरा हुआ है और अगर मुझे एक खरोच भी आई तो बिना सोचे समझे वो तुम दोनों बहन भाइयों का एनकाउंटर कर देंगे, समझे तुम? राजवीर की बात सुनकर अरमान ने अपनी गर्दन नीचे कर ली थी और बोला था, अगर मेहर उन डाइवोर्स पेपर पर साइन भी कर देती है तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम वो फोटोज डिलीट कर दोगे और कहीं लीक नहीं करोगे? अरमान की बात सुनकर राजवीर मुस्कुराया और बोला, मुझे सिर्फ डाइवोर्स पेपर पर साइन चाहिए। इस औरत के साथ मैं अपना किसी भी तरह का कोई भी नाम जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। और रही बात उन फोटोज की, तो बेफिक्र रहो, मैं उन फोटोज का करूँगा भी क्या। मैं किसी को भी वो फोटोज नहीं दूंगा और बल्कि डिलीट भी कर दूंगा, क्योंकि चाहे थोड़े पल के लिए ही सही, लेकिन तेरी बहन के साथ मेरा नाम तो जुड़ा हुआ ही था ना, तो मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ जो ऐसा करूँगा। मेहर अपने सामने बैठे हुए इंसान को देख रही थी और सोच रही थी कि एक समय था वो उसे कितना प्यार करती थी। राजवीर के लिए वो किसी भी वक्त कुछ भी करने को तैयार रहती थी। राजवीर के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, अपनी जान से प्यारी दोस्त जोया को उसने धोखा दे दिया था सिर्फ और सिर्फ राजवीर को पाने के लिए, और उसने उसे पा भी लिया था। लेकिन जब राजवीर की हवस उसके जिस्म को लेकर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी तो इस बात को लेकर वो परेशान हो चुकी थी और उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि राजवीर कभी भी उसे प्यार से पेश नहीं आता था। राजवीर सिर्फ और सिर्फ उसके जिस्म के लिए उसके पास जाता था और जब उसका मतलब पूरा हो जाता था वो मेहर की ओर पलट कर भी नहीं देखता था। अब मेहर ठाकुर ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि उसने राजवीर को किडनैप करके उसे अपना बदला तो ले ही लिया था, साथ ही साथ उसने अपने पेट में पल रहे राजवीर के बच्चे को भी मार डाला था, क्योंकि वो राजवीर की कोई भी किसी भी तरह की निशानी अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। हालांकि कहीं ना कहीं उसके कुछ इमोशंस थे जो अभी भी राजवीर के साथ जुड़े हुए थे, जो उसको राजवीर को तलाक देने से रोक रहे थे, लेकिन अब वो मजबूर हो चुकी थी। राजवीर को तलाक देने के अलावा उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मेहर ने अरमान की ओर देखा था। अरमान ने हाँ में सर हिला दिया था। अरमान के हाँ में सर हिलाते ही मेहर उन्हें डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे और राजवीर के हाथ में थाम कर बोली थी, राजवीर सिंघानिया, तुम ये मत समझना कि तुमने हम लोगों को हरा दिया है, ये अब शुरुआत है और देखते हैं इस लड़ाई में कौन कहाँ तक जाता है और कौन जीतता है। और रही बात तुम्हारे साथ नाम जुड़ने की, तो तुम्हें ये बहुत ही बड़ी खुशफहमी है कि मुझे तुम्हारा नाम की जरूरत है, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के नाम की जरूरत नहीं है। मैं घटिया औरत नहीं हूँ, घटिया इंसान तुम हो जो अपनी बीवी के साथ ही जानवरों की तरह बात से भी बदतर सुलूक किया करता था। मैं खुद तुम्हारे साथ अपना किसी भी तरह का कोई नाम जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। और रही बात बिजनेस की, तो तुम देखो, बहुत शौक है ना तुम्हें हमारे मुकाबले बराबरी करने का, तो ठीक है, अब हम तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हम तुम्हें बिजनेस में ही हराएंगे और तुम्हें मुंह के बाल गिराएंगे। ऐसा कहकर मेहर अरमान के साथ उसे होटल से निकाल कर चली गई थी और राजवीर कुर्सी पर बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ डाइवोर्स पेपर देखने लगा था। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह जोया के लिए सरप्राइज से भरी हुई थी। जोया अब एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमन बन चुकी थी जिसके अंदर दिमाग बिजनेस का कूट कूट कर भर चुका था। अब जोया को खाली इस बात का इंतजार था कि अभीर राठौर अब क्या चाहता था, वो क्या चाहता था आखिर, ऐसा क्या रह गया था जो अभी भी जोया को सिखाना रह गया था। जोया सोच ही रही थी कि तभी अबीर उसके पास आ गया था। अबीर सिंह राठौर को देखकर जोया ने अबीर से कहा, आखिर क्या सरप्राइज है मेरे लिए अबीर सर, और आप क्या कहना चाहते थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब अबीर ने जोया से कहा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप आइए मेरे साथ। ऐसा कहकर अबीर जोया को इस अस्पताल के टेरेस पर ले गया था और उस टेरेस को देखकर जोया पूरी तरह से हैरान हो गई थी। क्योंकि वो पूरा टेरेस टेरेस न होकर एक तरह का कोई जिम वगैरह लग रहा था। ज़ोया ने कहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पर दो औरतें आईं जो एकदम काफी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली सी लग रही थीं। उन्हें देखकर ज़ोया पूरी तरह से चौंक गई और अबीर सिंह राठौर की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी थी। तब अबीर ने ज़ोया से कहा, ये दोनों लेडी कोच है जो आज से आपको फिजिकल मजबूत बनाएंगी। इसका मतलब साफ था, आज से आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी। ज़ोया ये सुनकर हैरानी से अबीर सिंह राठौर की ओर देखने लगी थी। फिजिकल ट्रेनिंग का मतलब था कि ज़ोया को जूडो कराटे के साथ साथ पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा, जिससे कि वो किसी भी तरह की मुसीबत का सामना कर पाए। ज़ोया अपनी आंखें बड़ी कर करके अबीर की ओर देखने लगी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अबीर ऐसा भी कुछ कर सकता है। ज़ोया का दिमाग तो अब एकदम बहुत तेज हो चुका था, लेकिन अब साथ ही साथ अबीर उसका जिस्म भी एकदम मजबूत बनाना चाहता था, बिल्कुल लोहे की तरह। कथा खत्म। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।